श्लोक तः शरीरं च काव्यानाम् अलंकारश्च दर्शिताः शरीरं तावद् दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। उन्होंने काव्यों के शरीर और अलंकारों का निरूपण किया। विवक्षित अर्थ की गमक सुवंत और तिगंत पदों की माला शरीर होता है। उन पूर्वाचार्यों ने अपने ग्रंथों का प्रणयन शरीर और अलंकारों को प्रदर्शित करके किया। पिंड के घटक उपादान तत्वों के यथा योग्य सन्निवेश को शरीर कहा जाता है। अतः जिस प्रकार जड़ अवयवों और चेतन प्राण आदि के यथोचित संस्थान को शरीर कहा जाता है, उसी प्रकार अर्थ से सचेतन शब्द विन्यास ही काव्य का शरीर है। काव्य की जो कोई भी नित्य अनित्य शोभा होगी वह शब्द और अर्थ की ही होगी। अतः काव्य का यह शब्दार्थ समुदाय शरीर अलंकार्य है एवं जो तत्व इनमें आहित होकर उनको शोभा युक्त करते हैं वे सब इस काव्य शरीर के अलंकार हैं। दंडी के कथन से प्रतीत होता है कि पूर्व सूर्य काव्य में शोभा कारक सभी तत्वों को अलंकार संज्ञा से व्यवहृत करते थे। इस शास्त्र के लिए प्रयुक्त प्राचीन काव्यालंकार संज्ञा तो दंडी के कथन की पोषक है ही, उनके आसपास रचित ग्रंथों का काव्यालंकार नामकरण भी यही सिद्ध करता है। और तो और कटक कुंडलादि समस्थानिक अनुप्रास उपमा आदि को ही अलंकार कहने वाले वामन भी सौंदर्य और अलंकार को पर्याय माने बिना नहीं रह सके। अलंकारों से सर्वथा भिन्न गुणों के स्थापक वामन ने भी अपने ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सूत्र ही रखा है। दंडी ने अपने ग्रंथ में उन्हीं पूर्वाचार्यों का अनुसरण करके गुण रस शब्दार्थालंकार और नाटकीय संध्यंग वृत्यंग आदि तत्वों को अलंकार शब्द से ही अभिहित किया है। दंडी के यहाँ अलंकारों का स्थान शरीर पर कटक कुंडलादिवत आहार ही नहीं है, आहार अनुप्रास उपमा आदि भी अलंकार है और नित्य गुण रस आदि भी अलंकार है। अतः यहाँ अलंकार शब्द पीछे आ चुके गुण दोषान योग के गुण शब्द का समस्थानिक है, केवल अनुप्रासोपमादि शब्दार्थालंकार परक नहीं है। पूर्व सूर्यों द्वारा काव्य के शोभा हेतु गुण और अलंकारों के एक अलंकार शब्द से अभिहित करने का प्रेरणा स्रोत संभवतः भरत का इन्हें भूषण नाम देना लगता है। इस डेढ़ श्लोक में आचार्य ने काव्य शास्त्र के अधिकारी प्रयोजन विषय और संबंध इस प्रकार चारों अनुबंध बताए हैं। दसवें श्लोक के पूर्वार्ध में आचार्य दंडी ने पूर्व सूर्यों के मत में क्रियाविधि के दो विषय बताए, काव्यों का क शरीर ख अलंकार। काव्यादर्श के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस ग्रंथ के तीन विषय हैं, काव्यों का क शरीर ख अलंकार ग दोष। समर्थ कवि दोषों का परिहार किस प्रकार कर सकता है यह भी उन्होंने इसी प्रसंग में दोष प्रकरण के मध्य में और अंत में पृथक से भी बताया है। दसवें श्लोक के उत्तरार्ध से काव्यों के शरीर का निरूपण प्रारंभ हो रहा है। इस अर्धाली में दंडी ने काव्य के शरीर के घटक तत्वों का निरूपण करके काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया है। अवयवों का विन्यास विशेष लोक में शरीर कहा जाता है, यह शोभा कारक धर्मों का आश्रय है। भरत ने इसी धर्माश्रयत्व को लक्षित करके वाक को नाट्य का शरीर बताया है। दंडी के प्रकृत काव्यों का शरीर रूपक का प्रेरणा स्रोत भरत का यह कथन ही प्रतीत होता है। यो भामह ने भी काव्य शरीर रूपक का प्रयोग किया है, किंतु दंडी ने उपमानों के माध्यम से इस रूपक का और अच्छा उपयोग तो किया ही है। काव्य के लक्षण को भी काव्यों के शरीर के लक्षण के रूप में प्रकृत श्लोक से प्रस्तुत किया है। परवर्ती आचार्यों ने दंडी के पूर्व सूर्यों की इस काव्यों का शरीर कल्पना को काव्य के तत्त्व घटकों पर पुरुष के तत्त्व अंकों का आरोप करके आगे बढ़ाया है। काव्य के शरीर अर्थात स्थूल आकार के घटक तत्व हैं शब्द एवं अर्थ। अर्थ शब्द में समाविष्ट होता है, अतः उसे पृथक से कहने की आवश्यकता नहीं है। अविभक्तिक शब्द का प्रयोग नहीं होता। सविभक्तिक को पद कहते हैं, अव्यय भी सविभक्तिक ही है। पद दो तरह के होते हैं, सुबंत और तिगंत। कवि को इष्ट अर्थ से व्यवच्छिन्न युक्त अर्थात इष्ट अर्थ की गमक पदावली योग्यता आकांक्षा और सन्निधि से सुग्रथिक पदमाला काव्य का शरीर होती है। काव्य का ही शरीर बताने को अर्थात काव्येतर शब्दार्थ शरीर के व्यवच्छेदार्थ लक्षण वाक्य में इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना दिया है। इतर लौकिक या शास्त्रीय वांग्मय शरीर शब्दानुविध अर्थ की ही प्रतीति कराता है, जबकि काव्य का वांग्मय शरीर उसके अतिरिक्त इष्टार्थ की प्रतीति कराता है। यह इष्ट अर्थ अर्थात शोभा चारुत्व सौंदर्य काव्य शरीर के घटक शब्द से भी प्राप्त हो सकता है। आत्मा वाच्यादि अर्थ से भी श्लेष समता शब्द माधुर्य सुकुमारता ओजस नामक विशेष और अनुप्रास यमक आदि सामान्य अलंकारों से शब्द में चारुत्व प्राप्त होता है। प्रसाद अर्थ माधुर्य अर्थ व्यक्ति उदारता कांति समाधि नामक विशेष और उपमा रूपक दीपक रसवत पर्यायोक्त आदि साधारण अलंकारों से अर्थ में चारुत्व आता है। काव्य के स्वरूप के बारे में सर्वप्रथम चिंतन उपलब्ध होता है। ऋग्वेद में यह वैदिक साहित्य में निहित अंतर्दृष्टि के ऊह से सिद्ध है। ऋग्वेदीय ऋषियों के मत में काव्य का आधार वह शब्द है जिसमें रमणीय अर्थ निहित है। इस रमणीय अर्थ को रत्न स्वादमन एवं मधु शब्द से कहा गया है। वस्तुतः यह मधु शहद से स्वादुतर मधुरतर है। काव्य का यह रमणीय अर्थ सहृदय संवेद्य है। काव्य वनिता सहृदय की प्रिय जाया है। ऋग्वेद के ऋषि के अनुसार काव्य रचना में दोषों का परिहार आवश्यक है। ये दोष मृग्रता और वघ्रता दो प्रकार के हैं। वाक को अधेनु अफला और पुष्पा कहकर अर्थगत दोष व्यक्त किया है। कवि के आशय का ज्ञान श्रोता उसका सखा सहृदय होने पर ही कर सकता है। इन कथनों से यह निष्कर्ष निकालना उचित ही होगा कि ऋग्वेदी कवि रमणीयार्थ से अवच्छिन्न और निर्दोष वाक को काव्य मानते हैं। रमणीयता जहाँ अर्थगत है वाणी का रत्न है स्वादमन है वही शब्दगत भी है। शुक्र उज्ज्वल वर्णों से यह रमणीयता आती है। काव्य का विषय ऋग्वेद के अनुसार मुख्यतः इंद्र अग्नि और वरुण है। ये क्रमशः वीरता कर्म और कर्मफल के प्रतीक हैं। काव्य का प्रयोजन यश की प्राप्ति से अमरता है। काव्य शास्त्रियों में काव्य के स्वरूप के बारे में भरत की कल्पना यह है। काव्य में 36 तत्व अपेक्षित हैं, पर सर्वोपरि स्थान रस का है। आनंददायी अर्थ को प्रकट करने वाले उदार मधुर शब्दों के द्वारा काव्य का प्रणयन अपेक्षित है। विकृत अर्थात दोषयुक्त शब्दों का परिहार होना चाहिए। भरत के इस विवरण से स्पष्ट है कि अर्थगत सरसता और शब्दगत औदार्य तथा माधुर्य उनकी दृष्टि में काव्य के प्रयोजक धर्म है। शब्दान कर्तु प्रयतेत के बहुवचन से प्रतीत होता है तथा अन्यत्र स्पष्टतया कहा भी है कि काव्य का शरीर पदावली है। प्रमदाभिधेयान कहने से अर्थ उस काव्य शरीर में प्राण तत्व के समान प्रतिष्ठित है अर्थात भरत के वन में प्रमदाभिधेय पदावली काव्य के रूप में अभिष्ट है। ऋग्वेद से प्रचलित और भरत द्वारा आदृत काव्य लक्षण का स्पष्ट प्रतिपादन हमें काव्यादर्श अग्निपुराण और रसगंगाधर में मिलता है। इष्टार्थ व्यवच्छिन्नता की व्याख्या अग्निपुराण में स्फुष्ट अलंकार वाला गुणयुक्त तथा दोष वर्जित होना कहकर की गई है। भामह ने अभिधेय के साथ वक्र विशेषण का प्रयोग करके उसे काव्य में चारुत्व का प्रयोजक तत्व बताया है। उनके मत में अलंकृत शब्द और अर्थ काव्य है, पर चारुत्व वे वक्राभिधेय शब्दोक्ति से मानते हैं। इसके अनुसार वक्राभिधेय शब्द काव्यम भामह सम्मत काव्य लक्षण है अर्थात वक्र लोकोत्तर अर्थ वाला शब्द काव्य है, यही इनका साहित्य है। यह वक्रता कैसे आती है इसे स्पष्टतया भामह ने नहीं कहा है। उनके कथनों तथा ग्रंथ के विषय से इसका ऊह किया जा सकता है। गुणवत्त के ग्रहण तथा दोषयुक्त के परिहास से काव्य में ग्राह्यता आती है, अतः यह हानोपादान ही वक्रता है। काव्यालंकार का मुख्य विषय गुण अलंकार और दोष है। अतः भामा के मन की भीतरी परत में सगुण सा अलंकार और निर्दोष शब्दार्थ समुदाय काव्य है। काव्य लक्षण के बारे में रुद्रट यद्यपि मौन ही है, तथापि उन्होंने काव्य को चारु बनाने में असार का परिहार और सार का ग्रहण हेतु बताया है। सार तत्व रुद्रट के अनुसार रस और अलंकार हैं। भामह का स्पष्टतया अनुसरण किया है। वामन्य गुण और अलंकार से संस्कृत शब्दार्थ काव्य होता है। गुण जब है तो उनके विपर्यय स्वरूप दोष स्वतः ही नहीं होंगे, अतः उनका परिहार लक्षण में स्पष्टतः बताना उन्हें अनावश्यक प्रतीत हुआ है। काव्य शरीर के भेद निबंधन के आधार पर श्लोक पद्यम गद्यम च मिश्रम च तत्त्रिधैव व्यवस्थितम् पद्यम चतुष्पदी तच्च वृत्तम जातिरिति द्विधा। वह पद्य गद्य और मिश्र इस तरह तीन प्रकार से ही वर्गीकृत है। पद्य चार पदों का समूह होता है और वह वृत्त एवं जाति के भेद से दो प्रकार का होता है। काव्य के शरीर का लक्षण बताने के बाद आचार्य दंडी ने क निबंधन की पद्धति, ख भाषा, ग विनियोग के आधार पर काव्य शरीर के भेदोपभेद अगले प्रकरण में बताए हैं। इन तीनों में से क निबंधन का आधार काव्य शरीर के स्वरूप के सर्वाधिक अंतरंग हैं, अन्य आधारों में भी विद्यमान रहेगा ही, इसलिए सबसे प्रथम इसी आधार पर भेदक कथन 11वें श्लोक की प्रथम अर्धाली में किया गया है। आचार्य जैमिनी ने भरत के आद्य वांग्मय वेद को निबंधन की पद्धति के आधार पर ऋक् और यजुः इन दो भेदों में वर्गीकृत किया है। साम तो ऋक् का ही गेय रूप है। शाब्दिक चूड़ामणि अमर सिंह ने काव्य के गद्य और पद्य भेद बताए हैं। सामने भी इसी परंपरा का अनुसरण करके काव्य के गद्य और पद्य दो भेद बताए हैं। आचार्य दंडी ने इस परंपरा में एक नया मोड़ दिया। उन्होंने काव्य के शरीर के एक पद्य, दो गद्य और तीन मिश्र, ये तीन ही भेद बताए। दंडी ने के इस कथन में दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। क त्रिधा तीन प्रकार से कहने से ही परंपरा प्राप्त द्विविधता का खंडन होने पर भी ए वही कहकर त्रिविधता पर बल दिया। काव्यशास्त्र की परंपरा में दंडी की इस व्यवस्था को ही स्थान मिला। वैदिक परंपरा में पद्य का प्रथम स्थान था। वाल्मीकि के मुख से क्रौंच बध के दृश्य से उत्पन्न शोक की रसमय अभिव्यक्ति रूपी प्रथम काव्य तो पद्य रूप में ही था। उपलब्ध वैदिक वांग्मय में भी पद्य की ही अधिकता है। लौकिक काव्य तो पद्य में अधिक ही हैं। भरत ने भी वृत्त निबंधन पद्य और चूर्ण गद्य क्रम ही दिया है, अतः पहले पद्य फिर गद्य यह क्रम अधिक वास्तविक था। अमर सिंह और भामह की परंपरा ने इसे अकारण उलट दिया था। दंडी ने इसे फिर से व्यवस्थित किया। इस प्रकार आचार्य दंडी के अनुसार निबंधन की पद्धति के आधार पर काव्य के शरीर के तीन भेद हैं, पद्यमय, गद्यमय और दोनों का मिश्र रूप। काव्य के शरीर के निबंधन की पद्धति पर आधारित तीन भेदों का उद्देश्य करने के बाद एकादश श्लोक के उत्तरार्ध में प्रथम भेद पद्य का लक्षण तथा भेद उसके निबंधन के निमित्त छंद की द्विविधता के आधार पर बताया है। पद्य शब्द पाद के ही एक रूप पद से निष्पन्न है। अक्षरों और मात्राओं की नियत संख्या वाले शब्दों को छंद कहा जाता है। छंद से ग्रथित शब्द पाद कहता है। छंद के प्रयोग से वाणी में प्रियता, लोकोत्तरता और सामर्थ्य आ जाती है। पशुओं के पादों के आधार पर पाद शब्द का प्रयोग चौथे भाग के लिए रूढ़ हो गया है। पद्य शब्द श्लोक का पर्याय है तथा इसमें यद्यपि 2 से 6 तक पाद दृष्टिगोचर होते हैं, तथापि अधिकता 4 पादों की ही है। इसलिए पद्य को चतुष्पदी 4 पदों का समाहार प्रायोवृत्या कहा जाता है। पद्य के आधार पर छंद के भेद कई प्रकार से किए जाते हैं। अक्षरों और मात्राओं की संख्या पर आधारित भेद सर्वाधिक प्रचलित है। पाद में नियत अक्षर संख्या वाले छंद वर्ण छंद और वृत्त कहलाते हैं। मात्राओं की नियत संख्या वाले मात्रिक छंद जाति कहलाते हैं। दंडी ने दोनों प्रकारों के उल्लेख के साथ द्विधा कथन से अन्य भेदों के प्रति अपनी अरुचि व्यक्त की है। छंद शास्त्र के प्रामाणिक ग्रंथ में पहले जाति छंदों का निरूपण उपलब्ध होता है, फिर वृत्तों वार्णिक छंदों का। दंडी ने इस क्रम को भी उलट दिया है। इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। 1, वैदिक छंद अक्षर संख्या पर आधारित है, मात्राओं की संख्या पर नहीं। इससे प्रतीत होता है कि उद्भव और विकास की दृष्टि से वृत्त वार्णिक छंद का मूल प्राचीन है, जाति मात्रिक छंद का अर्वाचीन। 2, संस्कृत काव्यों में वार्णिक छंदों वृत्तों का प्रयोग मात्रिक छंदों जाति की अपेक्षा कहीं अधिक हुआ है। जाति छंदों के प्रयोग की मात्रा यदि कहीं बढ़ी भी है तो प्राकृतिक अपभ्रंश और देशी भाषाओं के वांग्मय में बढ़ी है। पद्य का लक्षण और अभेद प्रस्तुत करने वाला दंडी का यह पद्यांश अग्नि पुराण छंद सूत्र की हला युद्ध की वृत्ति काव्यालंकार सूत्र वृत्ति कामधेनु छंदो मंजरी और वृत्त रत्नाकर की नारायण भट्ट की टीका में घृत मिलता है। श्लोक छंदो विचित्याम सकलस्तत्प्रपंचो निदर्शितः सा विद्या नौर्वी विक्षुणाम गंभीरम काव्य सागरम। उसका पूर्ण विस्तार छंद शास्त्र में दिखलाया गया है। काव्य रूपी गहरे सागर का अवगाहन करना चाहने वाले के लिए वह विद्या पोत है। 12वें श्लोक में छंदो विद्या का महत्व बताया गया है। वृत्त और जाति काव्य रचना में उपयोगी होते हुए भी पृथक प्रस्थान के अंतर्गत है, अतः दंडी ने विषयांतर होने के कारण यहाँ उनका निरूपण नहीं किया, अपितु उसके लिए अपेक्षित विद्या छंद शास्त्र का निर्देश अलंकृत रूप से किया है। वृत्त और जाति के आधारभूत छंद का सर्वांगीण विवेचन छंदो विचित्त में लक्ष्य लक्षण निर्देश पूर्वक किया गया है। गंभीर काव्य रूपी सागर को पार करना चाहने वालों को वह विद्या जहाज है। यहाँ छंदो विचित्ति शब्द से दंडी रचित कोई छंदो ग्रंथ समझना उचित नहीं है। यह शब्द छंद शास्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। श्लोक के उत्तरार्ध में इसे स्पष्टतः विद्या कहा भी है। छंदो विचित्ति शब्द का प्रयोग तो उपमान 9 स्त्रीलिंग के लिंग से मेल खाने के लिए इसके स्त्रीलिंग के कारण किया है। भामह ने काव्योपयोगी विद्याओं के प्रसंग में छंद शब्द का और वामन ने छंदो विचित्ति का प्रयोग किया है। छंद शास्त्र का मूल ग्रंथ यो तो पिंगलाचार्य का छंद सूत्र है, पर काव्य में उपयोगी छंद शास्त्र भरत के नाट्यशास्त्र के 14-15 अध्याय में प्रतिपादित हैं। काव्य रचना में छंद शास्त्र की उपयोगिता ग्रंथकार ने 12वें श्लोक के उत्तरार्ध में बताई है। काव्य का प्रतिपाद्य श्लोक होता है, अतः काव्य में बहुआयामी गांभीर्य होता है। गांभीर्य की समानता लौकिक पदार्थों में समुद्र से ही की जाती है। सागर में गांभीर्य के कारण उत्ताल तरंगे उठती हैं, तो पोत से उन पर सवार होकर सागर का अवगाहन किया जा सकता है। काव्य में भी अर्थ की गंभीरता से उत्ताल भाव लहरियां उठती हैं, उन्हें काव्य में गति और यति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गति और यति का समन्वित रूप लय अर्थात छंद होता तो गद्य में भी है। वस्तुतः छंद और शब्द में अटूट संबंध है, पर पद की अपेक्षा बहुत कम होता है। छंद में और काव्य की रसवत्ता में गहरा संबंध होता है। काव्य की गति और यति रस के अनुकूल होनी चाहिए। यह लय ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वरों के नर्तन से आती है, जो छंद से व्यक्त किया जाता है। इस गति यति के कारण ही पद्य काव्य में पृष्ठ 33 में उक्त तीन गुण प्रियता, लोकोत्तरता और प्रभाव आते हैं। अनुप्रासादी शब्दालंकारों से व्यंजनाओं के द्वारा नाद सौंदर्य प्रकाशित किया जाता है और छंद से स्वरों के माध्यम से व्यंजन देह हैं तो स्वर प्राण हैं। व्यंजन सौंदर्य का जनक शब्दालंकार स्थूल है, काव्य में यत्र तत्र स्थापित है तो स्वर सौंदर्य का उपादान छंद काव्य शरीर में ओतप्रोत है, अनुस्यूत है। छंद काव्य का लास्य मधुर नृत्य है, साम अर्थात गीत उसे ही उभारता है। यही कारण है कि साम ऋचा पर ही अध्यूढ़ है, यजु पर नहीं। इस प्रकार नाट्य और संगीत कलाएं वाणी का मूक और शब्दात्मक अलंकार है, अतः काव्य के अंतर्गत ये दोनों कलाएं काव्य का अलंकार है। इसलिए आचार्य ने काव्य पर सागर का आरोप किया है। इस रूपक का आधार काव्य और सागर की गंभीरता है। सागर को नौ से पार किया जा सकता है। उसका आश्रय लेकर सागर की अतल गहराइयों का अवगाहन करके उसके गर्भ से रत्न प्राप्त किए जा सकते हैं तो काव्य का अवगाहन छंदो विद्या के द्वारा किया जा सकता है। विवक्षुओं या तितिरषुओं के साधनत्व के सादृश्य से छंदो विद्या पर नौका आरोप किया गया है। इन दोनों आरोपों में प्रकृति होने के कारण छंदो विद्या पर नाव का आरोप मुख्य है। काव्य पर सागर का आरोप उस आरोप का कारण है, अतः यहाँ परंपरित रूपक है। समान स्थानोच्चरित सव द न त और र क्षण न के प्रयोग से यहाँ श्रुत्य नुप्रास अलंकार है। श्लोक मुक्तकम कूलकम कोशः संघात इति तादृशः सर्गबंधाश रूपत्वाद अनुक्तः काव्य विस्तरः। पद्य काव्य के मुक्तक कूलक कोश संघात आदि भेद सर्गबंध का अंश होने के कारण नहीं कहे गए हैं। प्रकृति श्लोक में आचार्य दंडी ने पद्य काव्य के परिमाण पर आधारित भेदों का निर्देश किया है। दंडी के मत में कथ्य को समग्रता से समेटने की दृष्टि से पद्य काव्य का श्रेष्ठतम रूप सर्गबंध महाकाव्य होता है। अन्य सब भेद सर्वे पादा हस्ती पादे निमग्न न्याय से उसी में समाये जाते हैं, अतः इन भेद का नाम निर्देश मात्र यहाँ किया है। इसका तथा अन्य एतादृश भेदों का परिगणन और लक्षण अन्य ग्रंथों में उपलब्ध होता है, अग्नि पुराण में भी उपलब्ध है, पर वहाँ इनका क्रम स्वच्छंद है। दंडी का क्रम युक्ति संगत है। सहृदयों की चमत्कृत करने में समर्थ एक एक पद्य मुक्तक होता है, उसे पूर्वापर संबंध की आवश्यकता नहीं होती। अमरु शतक चौर पंचाशिका आदि के श्लोक मुक्तक हैं। सहृदयों को चमत्कार जहाँ अनेक श्लोक से होता है अर्थात परस्पर सापेक्ष जो अनेक श्लोक हृदयावर्जन में समर्थ होते हैं वे कूलक कहते हैं। जैसे रघुवंश के त्रयोदश सर्ग में गंगा यमुना के संगम का वर्णन परस्पर निरपेक्ष बहुत से विषयों पर पृथक रचित श्लोक समूह कोश होता है। जैसे नीति शतक तथा आर्या सप्त सती आदि एक अर्थ का एक छंद से वर्णन करने वाला श्लोक समुदाय संघात होता है। जैसे मेघदूत आदि वस्तुतः यहाँ एक छंद का बंधन अनावश्यक प्रतीत होता है। ऋतु संहार आदि संघात ही हैं। ये भेद तो इस आधार पर होने वाले भेदों के उपलक्षण मात्र हैं, परंतु ये सब सर्गबंध महाकाव्य के अंश ही हैं। ये सब महाकाव्य में समाहित रहते हैं। इनका दिंग निर्देश मात्र पर्याप्त है, इसलिए पद के परिमाणाधारित भेदों का विस्तार से निरूपण नहीं किया गया है। यहाँ दंडी ने पद्य विस्तर को नहीं कहा जाना पर्युदासवाक्य अनुक्तः से बताया है यह उचित नहीं है। प्रसज्य प्रतिषेध से निषेध करते हुए न उक्तः कहकर करना चाहिए था। सर्गबंध के होने वाले मुक्तक आदि भेदों का निर्देश 13वें श्लोक में करने के पश्चात आचार्य दंडी ने 6 श्लोकों में सर्गबंध का निरूपण इसकी 7 विशेषताएं बताकर किया है। श्लोक सर्गबंधो महाकाव्यम उच्यते त्वस्य लक्षणम आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम। सर्गबंध सर्गों में की रचना महाकाव्य है, इसका तो लक्षण बताया जा रहा है। मंगल कामना नमस्कार अथवा काव्य का निर्देश भी उसका आरंभ होता है। सर्गबंध शब्द प्राचीन आचार्यों द्वारा महाकाव्य के लिए प्रयुक्त संज्ञा पद प्रतीत होता है। मुक्तक आदि समस्त भेद अपने आप में पूर्ण है। सर्गबंध अपने अवयव सर्गों के परस्पर सापेक्ष होने के कारण मुक्तक आदि से भिन्न भी होता है, तथापि खंड काव्य भी महाकाव्य रूपी हाथी के पांव में समाया रहता है। अतः सर्गबंध शब्द महाकाव्य के लिए प्रयुक्त होता रहा है। महाकाव्य शब्द की व्याख्या दंडी ने नहीं की है, भामा ने उसे महापुरुषों का काव्य और महत काव्य बताया है। महत काव्य से लोक के व्यापी वृत्त को उपस्थित करने के कारण व्याप्त महत्ता अभिष्ट है। इस अर्थ में महाभारत शब्द निदर्शन है। इतना ही नहीं, भामह को महाकाव्य के इन दो अर्थों की प्रेरणा भी संभवतः महाभारत शब्द के निर्वचन से मिली है। आचार्य दंडी ने मुक्तक कूलक आदि का नाम निर्देश मात्र किया है, क्योंकि ये सब महाकाव्य के प्रवाह में स्वतः आ जाते हैं। उनका ज्ञान विस्तरेण विवरण वाले ग्रंथांतर से किया जा सकता है। संक्षिप्त ग्रंथ में तो बहुत महत्वपूर्ण बातों का विवरण अपेक्षित एवं उचित है। अतः मुक्तकादि के लक्षण के अकथन के विपरीत महाकाव्य का लक्षण यहाँ दिया जा रहा है, यह तू से सूचित होता है। दंडी का यह लक्षण भरत के काव्य बंध विकल्पन से बहुत प्रभावित है। वस्तुतः भरत ने नाटक प्रकरण आदि के काव्य बंध के बारे में जो कुछ कहा है उसमें से नाट्य से संबंध बातें यदि छोड़ दे, जैसे अंक की जगह सर्ग यदि कर दे, तो वह सब वर्णन पद्य बंधात्मक महाकाव्य और गद्य बंधात्मक आख्यायिका आदि पर बिल्कुल सही बैठता है। महाकाव्य लक्षण में आचार्य दंडी ने महाकाव्य के आरंभ कथा का स्रोत प्रयोजन नायक उद्दीपन विभाव चारुत्व त्वाधायक तत्व और अवयवों का स्वरूप ये 7 बातें व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करके अंत में उसके सर्वप्रधान 2 तत्वों लोकरंजन और सौंदर्य का विशिष्ट उल्लेख किया है। यह स्वच्छ व्यवस्थित संतुलित और सूक्ष्म दृष्टि उस युग के अन्य आचारों में उपलब्ध नहीं होती। संस्कृत के प्राचीन महाकाव्य में प्रारंभ वस्तु निर्देश से ही अधिक उपलब्ध होता है। वाल्मीकि रामायण कुमार संभव किरातार्जुनीय शिशुपाल वदम भट्टिकाव्य नैषधीय चरित इसके प्रमुख उदाहरण है। नमस्कारात्मक प्रारंभ महाभारत रघुवंश में मिलता है। आशीर्वादात्मक प्रारंभ वाला कोई प्राचीन प्रसिद्ध काव्य में दृष्टिगोचर नहीं हुआ। यों यह अंग लक्षण में समावेश के योग्य नहीं है। संभवतः यही कारण है कि महाकाव्य लक्षण के इस अंक का उल्लेख उस युग के अन्य आचार्यों ने नहीं किया। दंडी को इसकी प्रेरणा संभवतः भरत की नांदी से मिलती है, पर भरत ने नांदी में प्रथम 2 अंक ही बताए हैं। वस्तु निर्देशात्मक प्रारंभ की कल्पना संभवतः दंडी की अपनी है। परवर्ती काव्य शास्त्रियों ने दंडी की इस कल्पना को स्वीकार कर लिया है। भरत ने नांदी से चंद्रमा की प्रीति बताई है। चंद्रमा आध्यात्म में मन है, अतः नांदी अर्थात मंगलाचरण से कवि और सहृदय के मन की प्रसन्नता की प्राप्ति अभीष्ट है। श्लोक इतिहास कतोद्भूत मितरद्वा सदाश्रयम चतुर्वर्ग फलायत्तम चतुरोदात्त नायकम। इतिहास की कथा से उद्भूत अथवा अन्य काल्पनिक श्रेष्ठ आश्रय वर्ण वाला होता है। पुरुषार्थ चतुष्टय रूपी फल के अधीन होता है। चतुर तथा औदार्यादि गुणों से संपन्न नायक वाला होता है। कथा का स्रोत, महाकाव्य की कथा के दो स्रोत हो सकते हैं, इतिहास अन्य। इन दोनों स्रोतों से प्राप्त कथा सदाश्रय होनी चाहिए। इतिहास का अर्थ भारत में इतिवृत्त का तिथि क्रम से वर्णन नहीं लिया जाता, अपितु जो पुरुषार्थ चतुष्टय के उपदेश से सम्यक अन्वित तथा पूर्व हो चुकी घटनाओं के वर्णन से युक्त हो उसे इतिहास कहते हैं। अर्थात इतिहास घटनाक्रम की वस्तुति है जो लोक के देश काल पात्र विशेषातीत सर्वांगीण हित को दृष्टि में रखकर की जाती है। इस दृष्टि के कारण इतिहास और पुराण में भेद नहीं है। उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक मानव की समस्त चेष्टाओं के विकास का वर्णन पुराण का विषय है। इसी इतिहास की किसी कथा से महाकाव्य की कथा उद्भूत हो सकती है। तिथि क्रम वाला इतिहास तो इस महाचित्र की विशाल भित्ति पर एक बिंदु मात्र है। यही कारण है कि वाल्मीकि रामायण और महाभारत स्वयं किसी इतिहास कथा से उद्भूत होते हुए भी आज महाकाव्यों की कथा का प्रेरणा स्रोत इतिहास बन गए हैं। इतिहास सूक्ष्म रूप में सर्वदेश काल पात्र व्यापी होते हुए भी स्थूल रूप में अतीत की वस्तु होता है। कवि अतीत को आधार न बनाकर वर्तमान को भी अपनी कृति का आधार बना सकता है। यह वर्तमान स्थूल सत्य भी हो सकता है तो कवि के मनोजगत में प्रतिबिंबित सूक्ष्म सत्य भी हो सकता है। इतिहास हो चाहे वर्तमान हो या कवि की कल्पना में स्थित लोकवृत्त हो, इन तीनों प्रकार की कथाओं का आश्रय सत्य श्रेष्ठ होना चाहिए। असत नहीं अर्थात मानव के दोषों को प्रोत्साहन देने वाली कथा हे है, उसके गुणों को उभारने वाली कथा महाकाव्य का आधार बनने योग्य है। भरत ने नाटकीय वस्तु की ये विशेषताएं बताई हैं। उसका विषय प्रख्यात वस्तु हो, राजाओं का या राजर्षियों के वंश का चरित्र हो, दिव्य आश्रय से युक्त हो, संभवतः अंतिम बात को भामा और दंडी ने सदाश्रय कहा है। प्रकरण के लिए काल्पनिक कथा के विधान को देखकर ही संभवतः महाकाव्य में भी काल्पनिक कथा काव्यशास्त्रियों को उचित प्रतीत हुई है। भामा के अनुसार महाकाव्य महापुरुषों का काव्य होता है तथा इसका आश्रय सत अग्निपुराण में दंडी का विवरण ज्यों का त्यों ले लिया गया है। प्रयोजन धर्म अर्थ काम और सांसारिक दुखों से मुक्ति ये चार चतुर वर्ग कहलाते हैं। महाकाव्य को इनके फल के अधीन होना चाहिए। इस लोक में अभ्युदय और परलोक में निश्रेयस की सिद्धि जिससे होती है वह शास्त्र के द्वारा विधि निषेध की पद्धति से प्रतिपादित कर्म मार्ग धर्म होता है। समाज शास्त्र कानून इसी का अंग है। धर्म के अधीन रहकर जीवन को सुखी बनाने वाले स्थूल एवं सूक्ष्म उपकरणों का अर्जन और अर्जित की रक्षा करना अर्थ है। अर्जित अर्थ के द्वारा धर्मानुकूल सुखोपभोग काम है। इन तीनों से प्राप्त होने वाला सुख आनंद नश्वर है, दुख में पर्यवसित होने वाला है। अतः अनित्य सुखों और दुखों से मुक्ति मोक्ष है। यह पूर्वोक्त तीनों से न केवल निरपेक्ष है अपितु भिन्न है। दंडी ने चतुर वर्गों में सामंजस्य या किसी एक को प्रश्रय देने की बाबत कुछ नहीं कहा है, परंतु आगे उद्दीपन विभाव के रूप में काम और अर्थ से संबंध वर्ण विषयों के वर्णन से प्रतीत होता है कि दंडी इन दो पुरुषार्थों को महाकाव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। चारों पुरुषार्थों का सामंजस्य शास्त्र में प्रतिपादित है, उसे दृष्टि में रखते हुए मर्यादित संपन्न सुखी जीवन का वर्णन करना महाकाव्य का प्रयोजन दंडी को अभिष्ट प्रतीत होता है। यदि कोई कभी मोक्ष को ही प्रधानता देना चाहे तो अंगत्वेन व धर्मार्थ काम को दृष्टि में रखे, मोक्ष अंग नहीं हो सकता। अग्निपुराण में महाकाव्य को दंडी की तरह चतुर्वर्ग फल कहा है, किंतु भामा ने इन चारों पुरुषार्थों का अभिधान उपेक्षित होने पर भी अर्थ के उपदेश को अधिक आवश्यक बताया है। मंत्र दूत आदि को वर्ण विषय बताने से भी भामा का यही मंतव्य पुष्ट होता है। अर्थात भामा के मत में धर्म और काम अर्थ के अंग के रूप में प्रतिपादित होने चाहिए। इस प्रकार कथा और प्रयोजन इन दो व्यापी तत्वों का प्रतिपादन करने के बाद आचार्य ने चार व्याप्य तत्व आगे बताए हैं। नायक, महाकाव्य का नायक चतुर एवं उदात्त होना चाहिए। यहाँ नायक से आलंबन विभाव अभिप्रेत है, अतः यह नायिका, प्रतिनायक, उपनायक आदि अन्य आलंबनों का उपलक्षक है। नाट्यशास्त्र में प्रख्यात कीर्तिमान और उदात्त नायक बताया है। भामह और अग्निपुराण ने नायक की विशेषताओं का उल्लेख नहीं किया है।